नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक महत्वाकांक्षी और लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयां छूने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के 20 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। श्री लक्सन ने कहा कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में समझौते का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समझौता भारत की व्यापार कूटनीति का निर्णायक क्षण है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे हैं और भारत के विकास में निजी और विदेशी बैंकों के साथ बराबरी से खड़े हैं। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इंडिया ऑप्टल लिमिटेड ने युद्ध प्रणालियों के निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के साथ ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया परिकल्पना के अनुरूप स्थानीय विनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है और समर्थन करता है। नई दिल्ली में श्री यादव ने कहा कि किसी भी नए खनन पट्टे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विशेष रूप से संरक्षित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिह्नित मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिह्नित मतदाताओं का पता लगा था। अधिकारियों ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों से नाम न मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। प्रत्येक सुनवाई राज्य के अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होगी। ऐसे 4,000 पर्यवेक्षकों को 24 दिसंबर को कोलकाता में 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा ने एक विधेयक पारित कर दुकानों और निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य सीमा 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी है, जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा घंटों की सीमा 48 घंटे ही रखी गई है। 1958 के अधिनियम में संशोधन कर हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने अपरिहार्य स्थितियों का हवाला देते हुए वीजा जारी करने सहित सभी कौंसुलर सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ये निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में आम चुनाव 12 फरवरी को कराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि अंतरिम सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोहम्मद यूनुस ने दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमरीका के विशेष दूत सर्जियो गोर के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में कहा कि बांग्लादेश मतदान के अधिकार के प्रयोग के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, जिसे निरंकुश शासन द्वारा छीन लिया गया था। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारत ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।